Ari. जय गोपीजनवल्लभगिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे राधे जय राधा मदन मोहन ललिता देवी राधा मदन मोहन ललिता देवी जय श्री गौरांग श्री गौरांग जय श्री गौरांग नितय गौर हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल ज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो आज रविवार के भागवतम सत्र में हम श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद पांचवें अध्याय का 23 श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। आज 23 और 24 है श्लोक। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम।
माता जी अर्थ और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी सरल प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ। श्री प्रहलाद उवाच। प्रहलाद महाराज ने कहा श्रवणम सुनना कीर्तनम कीर्तन करना विष्णु भगवान विष्णु का अन्य किसी का नहीं स्मरण स्मरण करना पाद सेवनम चरणों की सेवा करना अर्चनम पूजा करना, षडोपचार अर्थात 16 प्रकार की साज सामग्री द्वारा, वंदनम स्तुति करना, दास्यम दास बनना, सख्यम सर्वश्रेष्ठ मित्र बनना, आत्मनिवेदनम अपने पास की प्रत्येक वस्तु को समर्पित करना, एक इसके साथ ही प्रहलाद महाराज ने एक और श्लोक बात कही अपने पिता हिरण्यकशिपु को उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कि हे पुत्र मेरे प्रिय प्रहलाद, तुमने अपने गुरुओं से क्या सीखा। उसके उत्तर में प्रहलाद महाराज जी बोलते हैं, इति पुंसार पिता विष्णु भक्ति नवलक्षणा क्रियते भगवत श्रद्धा तन्मे चित मन्ने अधितम उच्चतम। प्रहलाद महाराज कहते हैं, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम रूप साज समान तथा लीलाओं के विषय में सुनना, कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना अर्थात मनसा वाचा कर्मणा द्वारा उनकी सेवा करना, भक्ति शुद्ध भक्ति के ये 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तात्पर्य तो तात्पर्य थोड़ा लंबा है तो हम कुछ कुछ पैराग्राफ देखेंगे। तात्पर्य, जब प्रहलाद महाराज के पिता ने कहा कि उसने जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ सुनाए, तो प्रहलाद महाराज ने सोचा कि अपने गुरु से जो भी सीखा है वो जो सर्वोत्तम उपदेश है उसे ही वो बोलना चाह रहे थे। लेकिन उनके जो गुरु हैं जो गुरुकुल में थे वो संड अमर्क नाम के भौतिक गुरु थे, भौतिकवादी गुरु थे, तो उनके बारे में बताना प्रहलाद महाराज को व्यर्थ लगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्ति परेशानु विरक्त अन्यत्र च, मतलब यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है कि शुद्ध भक्त केवल भक्ति में ही रुचि रखता है, भौतिक कार्यों में नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज के दो गुरु हैं, एक तो संडमर्क जो भौतिकवादी गुरु थे और एक जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके श्री नारद मुनि। तो नारद मुनि को उन्होंने अपना सर्वस्व दिया हुआ था और जैसा वे बोले उस हिसाब से, जैसा हिरण्यकशिपु ने कहा तो उसका सटीक जवाब प्रहलाद महाराज इस श्लोक के माध्यम से दे रहे हैं। भक्ति करने के लिए मनुष्य को सदैव कृष्ण या भगवान विष्णु के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में लगना चाहिए। मंदिर पूजा की विधि अर्चन कहलाती है। यहाँ पर बताया गया है कि अर्चन किस प्रकार किया जाए। मनुष्य को कृष्ण के इन शब्दों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। जब वे कहते हैं कि वे सबों के महान शुभ चिंतक है, सुहृद सर्वभूतानाम, भक्त कृष्ण को अपना एकमात्र मित्र मानता है, यह सख्यम कहलाता है। पुंसा अर्पितो विष्णु, पुंसा का अर्थ है समस्त जीवों द्वारा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति को या केवल ब्राह्मण को भगवान की भक्ति करने दी जाए, नहीं, हर एक व्यक्ति भक्ति कर सकता है, हर एक व्यक्ति भक्ति कर सकता है। इसमें सभी आ जाते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं हम 24 घंटे बिजी रहते हैं, जो बहुत बिलियनर हैं, और ऐसा व्यक्ति जो कि दिन रात गरीब है लेकिन रोजी रोटी जुटाने के लिए दिन भर भाग दौड़ करता रहता है, वो भी आ जाते हैं। तो सभी आ जाते में कलयुग तो सारे लोग सुधर ही हैं, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से सारे सुधरों को कृष्ण भक्ति का जो ट्रेनिंग है वो इस्कॉन में मिल रहा है। तो यहां प्रभुपाद जी बोलते हैं हर कोई भक्ति कर सकता है। प्रभुपाद जी एक बार श्याम सुंदर की बेटी है क्या, प्रभुपाद जी के शिष्य हैं श्याम सुंदर प्रभु और उनकी एक बेटी थी सरस्वती जो बहुत ही छोटी थी। तो प्रभुपाद जी ने एक बार कुछ लोग बैठे हुए थे और बोले कृष्णा कौन है, तो कोई बोल रहे हैं लाइट है, कोई बोल रहे हैं खुशी है या फिर भगवान क्या है ऐसा पूछ रहे हैं। तो भगवान कौन है ऐसा के जवाब में अलग अलग प्रकार के जवाब मिल रहे थे। तो जब हम बहुत ज्यादा भौतिकवादी ज्ञान में बढ़ जाते हैं तो किस प्रकार से जो हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है या फिर जो कहे कि जो ज्ञान हमारे काम का है जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स चढ़ा देते हैं अज्ञानिता की, और उस अज्ञानता को ज्ञान समझ करके सारे लोग वहां पे जवाब दे रहे थे भगवान प्रकाश है, भगवान को कोई देखा नहीं है, भगवान अजन्मा है। तो प्रभुपाद जी सबको बताने के लिए कि कृष्ण ही भगवान है, उन्होंने केवल बताना चाहे कि किस प्रकार से एक बच्चा भी जानता है कृष्ण भगवान है। उन्होंने सरस्वती जी को बुलाया जो कि श्याम सुंदर प्रभु की बेटी है, छोटी बेटी थी। तो बोले बताओ कृष्ण भगवान कौन है, तो सरस्वती बोलती है कृष्णा इज लॉर्ड, कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड इट। तो ऐसे एक इस्कॉन में जो बाहर के सन्यासी या फिर बाहर के बड़े बड़े मायावादी सन्यासी या फिर तथाकथित आजकल जो लोग अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं और समझते हैं कि हम बहुत सारे बुक्स नॉवेल बहुत सारी थेसिस को पढ़ करके हम इतना समझ गए हैं कि हम हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, कैसे जीवन आया, कैसे कौन क्या कौन चला रहा सब जानते हैं। पर एक्चुअली वे इस्कॉन में एक छोटा सो छोटा जो बच्चा इस्कॉन में जो भक्ति कर रहा होता है, अभी श्यामानंद को भी पूछिए कि हमारे श्यामानंद ईश्वर गोपाल प्रभु के बेटे हैं, तो उसको भी पूछेंगे अगर कि कृष्णा कौन है या भगवान कौन है, तो जोर से बोलेगा कृष्ण, हरे कृष्णा, कृष्णा ही भगवान है, ऐसे बोलेगा। तो छोटा बच्चा भी पता, सबको पता है कि भगवान कौन है। प्रभुपाद जी एक बार आज सुबह ड्रेसिंग करते समय सुन रहा था मैं कि प्रभुपाद जी एक व्यक्ति को पूछ रहे थे कि भगवान कौन है, तो इस बात पे चर्चा चल रही थी। फिर प्रभुपाद जी पूछते हैं कि आप कैसे जानोगे कि आपके पिता कौन है, तो कोई बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों में से कोई व्यक्ति बोलते हैं हमें कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो बोलता है बहुत सारे लोग आके कोई भी आके बोलेगा कि वो तुम्हारा पिता है तो तुम मान लोगे, तो इधर उधर की जवाब दे रहे थे, बोलते हैं हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि कौन पिता है ऐसा करके बोल रहे हैं, बहुत सारा चीज जवाब दे रहे थे पर सही आंसर कोई नहीं दे पा रहा था। प्रभुपाल जी बोलते हैं सब कुछ इतना मत बात करो, केवल अगर आपकी माँ बोलती है कि ये हमारा पिता है तो आप इसको तो आप पिता उनको मानते हो, तो सब बोलते हैं हाँ दिस इज राइट, ये सही है। उसी प्रकार से गुरु साधु शास्त्र भक्तों के संग में हमें बचपन से ही बोलते हैं कि कृष्णा भगवान है। तो और किस प्रकार से भगवान है वो सब गुरु साधु शास्त्र हमें बता रहे हैं, बहुत आसान है समझना। कृष्ण भगवान नहीं है ये समझने के लिए बहुत प्रयास करते हैं लोग और अलग अलग प्रकार के पुस्तक लिखते हैं और उसमें उनको प्राइज भी मिल जाते हैं, आजकल की सभ्यता ऐसी होती जा रही है। लेकिन जो सही चीज है कृष्ण भगवान है, ये हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में बच्चा बच्चा जानता है। तो प्रभुपाद जी भी, तो उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज जी को नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ था, और उस संग के कारण चूंकि उन्हें बचपन से भौतिकवादी शिक्षा मिली, फिर भी उन्होंने अपने गुरु महाराज का जो वाक्य है हमेशा याद रखा कि कृष्ण भगवान है और कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, और कैसे करनी चाहिए वो अपने पिता को बता रहे हैं। वो तो आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यज्ञ करने के बाद कभी कभी सकाम कर्म में लगा व्यक्ति अपने यज्ञ फल विष्णु को औपचारिक रूप में समर्पित करता है, किंतु यहाँ पर कहा गया है भगवत यद्या मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु सीधे विष्णु को अर्पित करे। यह संन्यास कहलाता है, केवल न्यास नहीं। एक त्रिदंडी सन्यासी तीन दंड धारण करता है, जो काय मनोवाक्य शरीर मन तथा वाणी के सूचक हैं। ये सभी विष्णु को अर्पित किए जाने चाहिए, तभी कोई भक्ति प्रारंभ कर सकता है। सकाम कर्मी पहले कुछ पूर्ण पुण्य कर्म करते हैं और तब वे औपचारिक रूप से या आधिकारिक रूप से विष्णु को उसका फल अर्पित करते हैं, किंतु असली भक्त पहले शरीर मन तथा वचन कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है और तब अपने शरीर मन वचनों को कृष्ण की इच्छा अनुसार सेवा में लगाता है। तो प्रभुपाद जी आज सुबह क्लास में बोल रहे थे कि वी शुड कम आउट ऑफ फ्रॉम आवर बेस क्वालिटी। बेस क्वालिटी क्या है कि हम काम, क्रोध, मद, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, ये जो शब्द है ये शब्द नहीं है, ये शब्द ऐसा है कि हमको चारों ओर से जकड़ा हुआ है। ये सब शब्द नहीं है। अगर किसी को अगर वो दृष्टि प्राप्त हो जाए तो बोलेगा ये व्यासासन पे जो बोल रहा है ये चारों ओर से इनसे जकड़ा हुआ है। पर प्रभुपाद जी के जो ये आंदोलन है, कृष्ण भावनामृत आंदोलन, इसमें ही वो जुगाड़ बोल सकते हैं या सूत्र बोल सकते हैं, जिसमें व्यक्ति इन सारे आवरणों को, जो बेसिक, जो इसको बोलते हैं बेसिक क्वालिटी, इसको छोड़ करके वो ऊपर आ सकता है और मन वचन कर्म के द्वारा अगर भक्ति करता है तो ये सारे आवरण उसे कट जाते हैं, उसके हट जाते हैं। और इन सारे आवरणों के ऊपर जो सबसे ऊपर अहंकार है, यह आवरण जब हटता है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से जैसे अपना मुख दर्पण में, स्वच्छ दर्पण में देख पाता है, उसी प्रकार से अपने हृदयस्थ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को देख सकता है। तो ये आवरण ही है जो कि हमें अज्ञानता में बांधे हुए है। और ये अज्ञानता या फिर जो तमोगुण गुण है, ये जो रजोगुण है, ये तभी हटेगा जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को मन, कर्म और वचन से भगवान की भक्ति में लगाएंगे। तो एक कुलशेखर जी हैं, वो बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं मुकुंद माला स्त्रोत्रम में। तो परसों बलराम शक्ति प्रभु बता रहे थे इस श्लोक के बारे में। जिह्वे कीर्तये केशवम् मुररिपु चेतो भज श्रीधरम् पाणिद्वम् समचार्ये अच्युत कथा श्रोतद्वये त्वम् शृणु कृष्णालोकये लोकतन्द्वये हरेर्गच्छम् अंगरी अंगमूलयम् जिग्रघ्रान मुकुंद पाद तुलसी मूर्ध नामो अधोक्षरम। अर्थ है, हे जीवा, तुम भगवान केशव के यश का गुणगान करो। अभी प्रहलाद महाराज यहां बता रहे हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो ये साधना के 9 अंग हैं, साधना भक्ति के 9 अंग हैं, जो 9 लोगों के द्वारा संपन्न किए गए थे, जो उदाहरण हमें इस श्लोक में श्रीमद् भागवतम में मिलता है कि श्रवणम। तो यहां पे है कि हे जीवा, तुम भगवान केशव के यश का गुणगान करो। तो हम भगवान कृष्ण के यश का गुणगान कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आज, मतलब आज भी ऐसा होता है कि अगर हम कुछ बाहर में कुछ गाना अगर सुन लें तो अनकॉन्शियसली दिमाग में पीछे साइड में कुछ घूमता रहता है अगर हम बाहर के गाने सुन लेते हैं तो। क्योंकि बचपन से, जैसे जब हम कृष्ण भावनामृत में आने से पहले हम लोग काफ़ी भौतिकवादी विचारधारा, फिल्म और नाटक या फिर एक प्रकार का जो जीवन शैली जी रहे थे, या फिर कहे कि ये सारा जो जीवन शैली का जो हमको जो स्ट्रक्चर और जो उसका व्याकरण जो हमको दिया गया है, जिस प्रकार की हम जीवन शैली जी रहे हैं, वो पूर्ण रूप से हमारे आजकल जो मीडिया है, फिल्म है, उसके अनुसार जिस प्रकार से डायरेक्टर दिखाना चाह रहा था, वो जीवन शैली, वो डायलॉग्स, वो बिहेवियर, वो चीज हम अपना लिए हैं और उनके अनुसार ही हम जीने का प्रयास कर रहे हैं। पर जो षड गोस्वामी हैं, जो प्रभुपाद जो गुरु हैं, आचार्य वृंद हैं, वे बता रहे हैं कि भैया ये जीवन शैली नहीं है जीने का। जीवन शैली क्या है जीने का, वो उपदेशामृत में हमें बताया जाता है कि किस प्रकार से आपका मनस्थिति होना चाहिए, किस प्रकार से आपको आदान प्रदान करना है, किस प्रकार से आपको अपने इंद्रियों को, जैसे मैं कृष्णा भावनामृत आने से पहले मैं यही सोचता था, मेरा मन जो कहे वो अगर मैं करूं तो मैं सबसे जो मन बोले वो करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें, करने दो ना हमें जो करना है। तो ये हिप्पी कल्चर है, ये टोटली हिप्पी कल्चर है। प्रभुपाद बोलते थे बाहर वाले बाल बढ़ाते हैं या ये करते हैं, बट हिप्पी कल्चर वहां था और आज यहां भी है। पर इसको अगर कोई काट सका हिप्पी कल्चर को, तो प्रभुपाद जी काटे हैं। दूसरे लोग, दूसरे जो भी संप्रदाय को हिप्पी कल्चर को थोड़ा सा अलग रूप दे करके हिप्पी कल्चर से बहुत सारा चीज लेना चाहते हैं, पर प्रभुपाद जी हिप्पी कल्चर को, जैसे बोलते हैं ना डायनामाइट से उड़ा दिया, वैसे हिप्पी कल्चर को उड़ाया। प्रभुपाद जी किसी फिलॉसफी को उड़ाते थे, पर्टिकुलर पर्सन, व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराते थे। प्रभुपाद जी, जैसे आज मैं सुबह सुन रहा था तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद के शिष्य बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी फ्रूड इज सेइंग दिस चीज, फ्रूड इज सेइंग दिस, फ्रूड यह बोलता है। प्रभुपाद जी सबसे पहले बोलते हैं फ्रूड व्हाट इज हिज फिलॉसफी, और उसके बाद उस फिलॉसफी को वो एक एक करके उड़ाते हैं। तो बचपन में हम बहुत सारे चीज पूछते थे अपने अपने घर में, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। उनको ये नहीं पता होता था कि ये पूजा क्यों हो रहा है, क्यों करना चाहिए। बस हमारे माता पिता करते हैं इसीलिए, उनके माता पिता करते हैं इसलिए हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हर एक चीज का अगर सही जवाब मिलता है, तो जैसे कि हमको लगता है कि मेरा मन जो बोलता है वही करना चाहिए, उसी प्रकार से अगर सही हमें भक्तिमय ज्ञान प्राप्त होता है अपने गुरु से, अपने शिक्षा गुरु से, तो मन धीरे धीरे कन्विंस हो जाता है, इस पे आश्वस्त हो जाता है कि नहीं, ये जो गुरु साधु शास्त्र बोल रहे हैं हमारे भले के लिए, और इस पे बहुत सारे लोग चले हैं और उनको सफलता प्राप्त हुई है। सफलता क्या है जीवन में, प्रश्न ये आता है, सफलता क्या है जीवन में? लोग बोलते हैं कि बहुत पैसे कमा लिए वो सफल है। आजकल ये बहुत ज्यादा सोचा समझा जाने लगा है, भक्तों के एसोसिएशन में भी ये चीज आ रहा है अभी तो। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वो जानते हैं कि सही सफलता क्या है। सही सफलता प्रहलाद महाराज इस श्लोक में बता रहे हैं कि व्यक्ति अगर अपने जीवन में इन 9 साधना की विधियों को पूर्ण रूप से आत्मसात करके उसको फॉलो करता है तो वह सफल व्यक्ति है। सबसे बड़ा जो भौतिकवादी सफल व्यक्ति है, मान लीजिए मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी है, जो अलग अलग बिरला टाटा है वो है, पर भगवान ने हमको पहले से सफल करके भेजा इधर। हमको सफल बनने का ऐसा ये नहीं है। वो कैसे भाई सफल बनने के लिए कैसे भेजा है? तो जैसे प्रभुपाद जी से कोई पूछते थे कि जब प्रभुपाद जी शुरू शुरू में अमेरिका गए तो आप कौन है, आपके क्या फॉलोवर, आपका क्या कोई मठ है, मंदिर है, तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमारे सैकड़ों मंदिर हैं, जबकि उस समय एक भी मंदिर नहीं था, और हजारों शिष्य हैं और हजारों लोग कृष्ण भावनामृत को फॉलो कर रहे हैं, केवल समय उसको उसको दूर किए हुए, टाइम सेपरेट किए हुए था। प्रभुपाद जी का ये था। तो उसी प्रकार से भगवान ने हम मनुष्य को, जो भगवान श्री कृष्ण ने हम मनुष्यों में वो सारी चीज दी है जिससे हम वो सफलता को, जीवन की सफलता को प्राप्त कर सके, जो कृष्ण प्रेम है। लेकिन हम सफलता का कुछ अलग ही मतलब समझते हैं। अभी मुकेश अंबानी कितना भी बड़ा, कितना भी रॉयल घर में अगर वो बैठ करके वो नाश्ता पानी जो भी खा रहा है, डंडल के गद्दे पे सो रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, अरबों का अगर मान लीजिए उसका घर है, फिर भी वो चार पांच चीज ही करता है, सांस लेता है, पानी पीता है, खाना खाता है, बच्चे पैदा करता है और कुछ चीज को कंट्रोल करता है। तो ये चीज तो भिखारी भी करता है, या फिर गरीब से गरीब आदमी भी ये चीज कर सकता है। इसी चीज को वो बहुत अच्छे से कर रहा है तो वो सफल हो गया। मरेगा तो उसको शरीर में दर्द नहीं होगा क्या? कौन सा डॉक्टर कौन सा उसको शरीर में ऐसा कौन सा इंजेक्शन मार देगा कि शरीर में दर्द नहीं होगा मरते समय? रूपा जी बोलते हैं कि 40 शायद हजार है या 40 बिच्छुओं जैसा डंक लगता है उस समय, वैसा मृत्यु का ऐसा दर्द होता है। तो ये मृत्यु जो है हम सबके सामने कभी भी आ सकती है। जैसे सुरसा हनुमान जी के सामने मुंह खोल कैसे खड़ी थी और हनुमान जी उसके अंदर जा रहे थे, उसी प्रकार से हम काल के गाल में हमेशा घुसे जा रहे हैं। बड़े बड़े धीरू भाई अंबानी सब चले गए काल के गाल में, तो हम भी चले जाएंगे। लेकिन वो जो अंदर जा रहे हैं उसके पहले अगर हम भक्ति कर लिए, तो जिस प्रकार से हनुमान जी सुरसा को धोखा दे के बाहर आ गए, उसी प्रकार से हम कलयुग और माया देवी को धोखा दे के कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जा सकते हैं। प्रभुपाद जी जैसे गुरु के शरण लिया तो हम डायरेक्ट अपने गुरु महाराज जी जैसा बोलते हैं, और कि एवरीवन कैन गो बैक टू गॉडहेड, लेकिन उसके लिए एवरीवन कैन सी कृष्णा, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस है, प्रोसेस प्रभुपाद जी बताते हैं। चैलेंज करते थे प्रभुपाद जी को लोग, कैन यू सो मी गॉड? प्रभुपाद बोले यस आई विल सो यू, मैं दिखा सकता हूं, लेकिन आपको ये प्रोसेस पालन करना है। तो ये प्रोसेस पालन करते समय हम, जैसे गौरांग प्रभु बोलते हैं कि हम अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे क्या देखते हैं, बहुत सारे मरीज हैं, बहुत सारे रोगी लोग हैं, और हम भी अगर रोगी हैं तो हम देखते हैं कि अरे कोई ठीक तो नहीं है, किसी को हाथ में दर्द है, किसी को बैंडेज है, कोई बुखार है, फिर आईसीयू यूनिट है, या फिर एक हड्डियों का विभाग है, अलग अलग प्रकार का विभाग, और सब लोग दौड़ रहे हैं। तो कोई बोलेगा अरे इतना दुख दर्द है, हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। नहीं, जब आपको चोट लगता है या बीमार पड़ते हैं या अंदर से कैंसर हो जाता है, तो व्यक्ति हार फार के भी कितना भी आयुर्वेदिक किया हुआ उसको जाना पड़ता है हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अगर आयुर्वेदा हॉस्पिटल हो तो आयुर्वेदा हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा उसको। तो उसी प्रकार से इस संसार में जब हम आए हैं, यह जो हमको मनुष्य शरीर मिला और इस जो काम क्रोध मद लोभ से हम जो चारों ओर से सिकंजे से जो जकड़े हुए हैं, अगर हमको सच्चा सुख प्राप्त करना है, अगर हमको सच्चा मित्र प्राप्त करना है, और अगर हम हमेशा के लिए आनंद और जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको इस्कॉन रूपी हॉस्पिटल में आना ही पड़ेगा। और इस हॉस्पिटल में हम देखेंगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, हर एक इंस्टीट्यूशन में प्रॉब्लम होता है। तो हम बोलेंगे कि अरे यहाँ भी प्रॉब्लम है, चलो यहाँ से। अरे यहाँ से चले जाएंगे तो फिर जो हमारा जो प्रॉब्लम खुद का है उसको दूसरा इंस्टीट्यूशन नहीं लगा नहीं करेगा वो। जैसे क्या होता है कि जैसे बताते कि कोई बहुत बुरा चीज़ है, खराब चीज़ है, उसके ऊपर बहुत अच्छा कवरिंग कर दो और देखने में अच्छा लगता है, और उसको अगर सोफा सेट पर रख दिया जाए तो वो बोलेंगे बहुत अच्छा चीज़ है। या फिर व्यक्ति के शरीर का अगर दुर्गंध निकालना हो तो व्यक्ति क्या करता है, परफ्यूम डियोर लगाता है तो, पर नहाता नहीं है, पर क्या होता है उसके अंदर बीमारी डेवलप होना शुरू होता है। तो उसी प्रकार से अगर हम अपना जो उपचार है जो सही तरीके से प्रभुपाद के दिए हुए इस्कॉन में हो सकता है, अगर वो छोड़ करके हम ऐसे संस्था में चले जाते हैं या फिर ऐसे फिलॉसफी को फॉलो करने लगते हैं जो कि हमको ऊपर से गुड़ी गुड़ी और अच्छा लगता है, तो हम अपने अंदर का जो हमारा जो शत्रु है उसको उसको उससे हम भाग रहे होते हैं, उसका इलाज नहीं हो पाएगा। तो उसका इलाज भी प्रहलाद महाराज इस श्लोक में बोल रहे हैं अपने पिता को, अपने पिता के माध्यम से हमारा हृदय में जो हिरण्यकशिपु है उसको ही बोल रहे हैं। तो साधना के बारे में बताते हैं, भक्त बोल रहे थे कि अपने हृदय का भाव को प्रकट करना भगवान के समक्ष, जैसे हमारे गुरुओं ने बताया है, क्योंकि अलग अलग प्रकार से लोग अपना भाव प्रकट करना चाहते हैं। तो हमें एक जैसे कि बहुत लोग उदाहरण दे रहे थे कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे से क्रिकेट के शॉट्स खेलते हैं, और अगर कोई बुक्स पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि ये स्टेप्स फॉलो करने पे जो अच्छा शॉट होता है वो सचिन ही मारता है, पूरा इसको सचिन के जैसा शॉट जो मारता है, फोर सिक्सर जो भी मार रहा है, वो इस सारे चीज को फॉलो करते हुए कर रहा है। तो अगर कोई डायरेक्ट सचिन को फॉलो करना चाहेगा विदाउट बुक पढ़े हुए तो उसको बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वो जो स्थिरता है वो शॉर्ट्स में वो तभी आया है जब एक एक चीज को फॉलो किया गया, वो ट्रेनिंग लिया गया है। तो उसी प्रकार से इस्कॉन में आके हमें ये ट्रेनिंग लेना है किस प्रकार से हम साधना करें। तो अपने हृदय के भाव को जो प्रकट करना है भगवान के समक्ष, हमें गुरु साधु शास्त्र से के द्वारा पता चलता है, और श्रीमद् भागवतम के द्वारा पता चलता है वो चीज। उस श्रीमद् भगवद गीता में क्या है, फिलॉसफी है किस प्रकार से भगवान को पूर्ण रूप से शरण ग्रहण ले सकते हैं, हर एक प्रकार के व्यक्ति भगवान का किस प्रकार से शरण ले सकते हैं, और भगवान किस कैसे लोगों के शरण लेने में मदद करते हैं। तो और श्रीमद् भागवतम क्या है, ये अलग अलग प्रकार, ये जो फिलॉसफी किस प्रकार से भगवान का शरण, कैसे अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग सिचुएशन में, जीवन के अलग अलग सिचुएशन में भी भगवान के का पूर्ण रूप से शरण ले सके। हम देखते हैं प्रहलाद महाराज से लेके ययाति तक के लोग, के अजामिल तक के लोग किस प्रकार से पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में संलग्न हुए और अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो श्रीमद् भागवतम हमें क्या बताता है कि सबसे गिरे से गिरे हुए लोग भी कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम, जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को ये पता था कि कलयुग में गिरे लोग ही रहने वाले हैं, बहुत ही शूद्र लोग होने वाले हैं, तो किस प्रकार से भागवतम को पढ़कर समझकर सुनकर वे अपने आप को बोलेंगे अच्छा हम इस पॉइंट पे हैं, अजामिल ने यहां से शुरू किया, हमें भी यहां से शुरू करना चाहिए, ययाति यहां पे था और उसने वापस से भगवान की भक्ति शुरू की। यहां तक कि भागवतम वर्णन करता है कि एक व्यक्ति जिसके हाथों से गलती से गाय का वध हो गया और उसके उसके गुरु महाराज ने श्राप दे दिया कि तुम शूद्र बन जाओगे, राक्षस बन जाओगे। उस व्यक्ति ने श्रवणम कीर्तनम विष्णु का शरण लेकर क्या किया, उसके गुरु महाराज को जो श्राप था उसे काट दिया और वो भगवान के धाम उसी जीवन में चला गया, भगवत धाम प्राप्त किया उसने। तो भगवान की जो भक्ति है वो किसी पे डिपेंड नहीं है, भगवान की जो भक्ति है कोई भी कर सकता है और भगवान की भक्ति किसी जी भी चीज पे डिपेंड नहीं है। अगर कोई करे तो वो जो उसका जो जो फल है वो उसे प्रदान होगा ही, मिलेगा ही मिलेगा। तो हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि किस प्रकार से इस श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि नौ प्रकार के लोग हैं जो भगवान की भक्ति हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु इसको कर पाए। उसमें से जो हैं वो श्रवणम के लिए किनका नाम आता है, परीक्षित महाराज का। तो हम देखते हैं कि श्रृंगी के श्राप से राजा परीक्षित महाराज को 7 दिन मिले केवल, कि 7 दिन के बाद आपको तक्षक सांप डस लेगा जिससे आपकी मृत्यु होगी। तो 7 दिन थे परीक्षित महाराज के पास। तो उसी प्रकार से नहीं, 7 दिन जो थे उसमें परीक्षित महाराज ने क्या किया, श्रवण किया, श्रवण किया। और श्रवण किया तो ऐसा श्रवण नहीं किया कि बीच में पानी मांग रहे हैं या फिर शाम हो गया, रात हो गया, अभी दूसरा का कुछ काम करते हैं। 7 दिन लगातार वो श्रीमद् भागवतम का श्रवण किए हैं, तो पूर्ण रूप से श्रवण किए। उसमें 3 बार सुखदेव गोस्वामी ने उनका टेस्ट भी लिया और उस टेस्ट में पास हुए वो, कि किस प्रकार से केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही सबसे उच्च जीवन का लक्ष्य है। और इसके इसको प्राप्त करने के लिए अगर हम जीवन में जीते हुए अगर हम कुछ कुछ चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी देवी देवता के पास जाए या फिर मायावादी सिद्धांत को ग्रहण करे, वो किस प्रकार से उसका खंडन करते हुए बारंबार वे भगवान कृष्ण की भक्ति, और जैसा उनके गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी बताते हैं उस पर पूर्ण रूप से श्रद्धा रखते हुए अगर कोई निगेटिव भी क्वेश्चन करता है तो उसका किस प्रकार से उत्तर दिए वे परीक्षित महाराज को हम देखते हैं कि श्रवण हमारा पक्का होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। श्रवण तभी संभव है जब हम संग में आएंगे। तो संग बहुत जरूरी है, संग किसी एक व्यक्ति का भी हो सकता है, संग बहुत सारे लोगों का भी हो सकता है, लेकिन कृष्ण भावना अमृत संग प्रभुपाद ने जो नाम दिया इसका, अमृत है ये। क्या है, डे टू डे लाइफ में हम भक्ति के अलग अलग अंगों को रिचुअलिस्टिक रूप में फॉलो करने लगते हैं, लेकिन जब हम बार बार पढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथ प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे हुए बार बार पढ़ते हैं, तो हम जब दंडवत कर रहे होते हैं प्रभुपाद जी को, जब हम अर्चना विधि मंगल आरती में आते हैं, मंगल आरती में आके दर्शन लेना भी एक अर्चन विधि है, पुजारी तो कर रहा है लेकिन जब हम दर्शन कर रहे हैं तो हम भगवान का लैंप हो रहा है, धूप हो रहा है, वो सब देखते हैं, तो वो अर्चनम विधि में होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग अर्चना कर रहे होते हैं उस समय, केवल ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटी ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जय श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी की जय। तो श्रवण की विधि परीक्षित महाराज में इसमें सबसे ऊपर आते हैं श्रवण की विधि में। तो हमारे अमोघ लीला प्रभु जी एक दिन बोल रहे थे कि व्यक्ति अगर अच्छा खाता है तभी वो ढगार मार सकता है। तो अगर हम श्रवण करेंगे तभी हम कीर्तन कर सकते हैं। केवल श्रवण 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 किया तो ऐसा कोई हो नहीं सकता जो कीर्तन ना करे। हमारे हरि गोपाल प्रभु हैं, वो इतना श्रवण किए इतना श्रवण किए, उनको बोला जाता था कि क्लास दीजिए, ये दीजिए, आप जाइए प्रचार करने, कम से कम 5-6 ईयर्स तो कुछ उन्होंने नहीं किया। पर अभी रोके रुकते नहीं है, सब जगह जाके अलग 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 जगह पर उन्होंने कथा कीर्तन हरिनाम 64 माला ऐसा। तो ऐसा कथा कीर्तन में बहुत इंटरेस्ट है उनको। मैंने देखा है कि फोन पर भी उनका हरि कथा हरि चर्चा चलता रहता है ऑलवेज। तो व्यक्ति जो सुना है, जितना हम सुनेंगे या पढ़ेंगे प्रभुपाद के पुस्तक, तभी हम बोल पाएंगे। तो इसके उदाहरण में परीक्षित महाराज हैं, फिर कीर्तनम, कीर्तन में सबसे ऊपर हैं सुखदेव गोस्वामी जी। भगवान के बारे में कथा करना कीर्तन है, हरिनाम का कीर्तन करना कीर्तन है, बहुत सारे लोगों को भगवान के कीर्तन के लिए बुलाना कीर्तन है। बृहद मृदंगम भी, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी है, कीर्तन है। तो ये कीर्तन बहुत फैला हुआ है। जिस भक्त को जिस प्रकार से कीर्तन में हेल्प करने का इच्छा होता है, प्रभुपाद जी उसे जरूर अलग अलग प्रकार से प्रेरणा देते हैं। देखिए प्रभुपाद जी कभी कीर्तन को बोलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को, बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं। तो कीर्तन बहुत व्यापक है। तो कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी, जो कि श्रीमद् भागवतम में नाम कीर्तन अंतिम अध्याय अंतिम श्लोक में भी नाम कीर्तन को बहुत बल दिए हैं। और इस श्लोक में कुलशेखर जी आचार्य जी बोल रहे होते हैं कि जीवा, हे जीवा, तुम सदैव भगवान केशव का यश गान करो। हे मन, तुम मूर असुर के शत्रु की पूजा करो। तो हमारे जो मैं बता रहा था कि मनुष्य किस प्रकार से सफल हो सकता है, भगवान ने हमें सारे हथियार दिए हैं, उन हथियारों को हमें बस यूज करना और माया देवी खुश होगी कि यह व्यक्ति कृष्ण की ओर जा रहा है। फिर हाथों का क्या काम है, तो हाथ बोलते हैं कि हे हाथ, तुम श्रीपति की सेवा करो। और कान, हे कान, तुम भगवान की अच्युत की कथाएं सुनो। तो जैसे पहले के जमाने में यज्ञ हुआ करते थे, जैसे त्रेता युग में यज्ञ होता था, दशरथ जी यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ से यज्ञपति अग्निदेव निकलते हैं और उनको यज्ञ का फल देते हैं, तो उन्हें 4 पुत्र होते हैं। उसी प्रकार से हरेक युग में ये जो युग धर्म है यज्ञ करना, ये बदलता रहता है। तो अभी कलयुग का युग धर्म क्या हो गया, हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ है, यज्ञ है। तो यज्ञ कुंड क्या है, कान है, और आहुति क्या है, हरिनाम है। जीवा से हम, वो चम्मच है जिससे हम घी हम डालते हैं। तो ये होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। फिर आगे चल के हमें जो दूसरा हथियार मिला है मनुष्य जीवन में, वो क्या है सफल बनने के लिए, आंख। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हे आंख, तुम श्री कृष्ण को निहारो। तो प्रभुपाद जी ने कहा है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा काम बाधा हो या व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रह रहा है, तो वो आकर के भगवान का रूप को निहारे, रूप का गुणगान करे। आगे बोलते हैं, हे पांव, तुम भगवान के मंदिर जाओ। तो इस हथियार का काम क्या है, सही जगह बुलेट दागना। ऐसा नहीं सब जगह हम बुलेट दाग रहे हैं, गोली मार रहे हैं सब जगह, तो उससे शत्रु पे विजय प्राप्त नहीं होगी। तो सही जगह यानी कि शत्रु के हृदय में अगर गोली मारना है, तो पीके बोलता है कि जो डर गया वो मंदिर गया। लेकिन अपने पैरों को मंदिर तक लेके गए तो हम क्या करते हैं, काम क्रोध लोभ भक्तों के संग में लेके इसको सही जगह गोली मार रहे हैं हम, तो इससे हम बाहर निकल सकते हैं। हे पांव, तुम भगवान हरि के मंदिर जाओ। नाक, अभी ये जो हमारे शरीर के अंग हैं इनका हमें क्या काम है, नाक तो हम भगवान के, अगर भगवान को अर्पित किया हुआ अगर जो गंध है फूल है उसको हम सूंघते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर के जो वासनाएं हैं वो फ्यूम्स होने लगते हैं। फ्यूम्स होना मतलब धुआं बन के उड़ जाते हैं। इसका उदाहरण कहां हमको देखने मिलता है, श्रीमद् भागवतम में जब जय विजय के द्वारा चार कुमारों को रोक दिया गया था और जब चार कुमार जय विजय को श्राप दे देते हैं, तब जब भगवान आते हैं तो उनके चरणों के जो तुलसी है, तुलसी की जो खुशबू है जब चार कुमारों के अंदर नाक के अंदर जब प्रविष्ट होती है तो उनका जो विचार है जो उनका फिलॉसफी है वो चेंज हो जाता है, फ्यूम्स बन जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम जो उनका फिलॉसफी था कि भगवान ये अनादि हैं, जब उन्होंने भगवान को देखा तो भगवान के व्यक्ति रूप में, व्यक्तिगत रूप में भगवान की पूजा करना, भगवान की सेवा करना, भक्ति करना को सबसे प्रमुख माना, तो ये जो विचार है जो चेंज होता है वो भक्तों के संग में आके प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ मॉर्निंग प्रोग्राम को अटेंड करने के कारण हम देखें हजारों हजारों लोग के हृदय में ये जो चीज है वो बदलाव आया है। जैसे कि एक बार मैं आनंद वृंदावनपुर का कुछ सेमिनार था वहां पे आया हुआ था, तो एक 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 भक्त एक बाहर के एक व्यक्ति को लेके आए थे, दाढ़ी बड़ा था, बहुत बड़ा फिलोसफर था ऐसा लग रहा था, बहुत आर्गुमेंट कर रहा था ये कैसा वो कैसा। तो आनंद वृंदावनपुर ने कहा कि आप केवल आओ मॉर्निंग प्रोग्राम में, आप कथा में बैठो, कथा में नहीं बैठ सकते तो कथा कीर्तन करो, डांस करके कम से कम एक माला करके जाओ। उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसका आंसर है क्या, तो भी देखा कि इतने बड़े सफल व्यक्ति हैं। आनंद वृंदावनपुर का केस ऐसा है कि वो सफल व्यक्ति दोनों साइड से हैं। वो श्रवणम कीर्तनम विष्णु में बहुत आगे बढ़े चढ़े हैं और भौतिक रूप से भी वो, उन्होंने उनको जो भगवान की कृपा मिली है उसका पूर्ण रूप से उन्होंने यूज जो है भगवान की भक्ति करने के लिए किया है, बहुत सारे लोगों को भक्ति में लाने के लिए कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं कि जो अर्चनम विधि है वो गृहस्थ को करना चाहिए, अर्चनम की डीटी वर्शिप गृहस्थ को करना चाहिए, और अगर गृहस्थ ऐसा गृहस्थ कंजूस कहलाता है जो केवल पैसे पैसे तो बना लिया लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगाता, तो आप सोच सकते हैं बड़े बड़े जो कि अपने आप को कंजूस नहीं मानते और बहुत सारे लोगों में पैसे उड़ा रहे होते हैं, प्रभुपा जी क्या बोलते हैं, कंजूस है क्यों, क्योंकि भगवान की सेवा में पैसे नहीं यूज कर रहा है, और क्या बोलते हैं उसको, मक्खी चूस है। तो ऐसा है, तो इसके पूरा विपरीत उदाहरण हम आनंद वृंदावनपुर का देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसमें कहा गया है इस श्लोक में, हाँ, हे नाक, तुम भगवान मुकुंद के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी मंजरियों को सूंघो। तो अब अगर हम सूंघते हैं या फूल जो सूंघते हैं, अरे हम सोचते हैं अरे ये फूल दे रहा प्रसाद कुछ नहीं दे रहा है, बहुत बड़ा चीज है वो हमारा अंदर का अज्ञान को फ्यूज कर रहा है, वो धुआं बना दे रहा है उसको। हे सिर, तुम भगवान अधोखज का नमन करो। जब हम भगवान के सामने एक बार दंडवत करके हम कहते हैं हे भगवान मैं आपका हूं, तो उस व्यक्ति के ऊपर कर्म का सिद्धांत जो प्रारब्ध है वो काम करना बंद करता है, फिर भगवान की कृपा शक्ति काम करना शुरू हो जाती है। तो भगवान को दंडवत करने का इतना बड़ा ये है, और भगवान की कृपा शक्ति जब काम करना शुरू होती है किसी व्यक्ति पर, ये कृपा अलग अलग प्रकार से मिलती है, सभी भक्तों बहुत सारे भक्तों को पता है, अलग अलग प्रकार से भगवान की कृपा मिलती है कि अलग अलग भक्तों को। जैसे किसी भक्त को ऐसा है कि अपने मन स्थिति के किसी स्टेज पे है, जिसको अगर ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो गया तो भक्ति छोड़ के भाग जाएगा, तो भगवान क्या करते, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगे उसको, उसे इंस्पिरेशन देते हैं। अगर किसी को कुछ धन मिल जाए और फिर वो भक्ति में आगे बढ़े तो भगवान उस तरह से उसको करते हैं। पर अगर कोई शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है तो भगवान टेस्ट तो होगा लेकिन उसे बहुत खुशी भी मिलती है। तो ये जो बाहर में हम भौतिकवादी संसार में देखते हैं कि मनुष्य अलग अलग प्रकार के चीजों को जब स्क्रीन अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देखता है तो उसको दूसरों को दिखा के उसको खुशी होता है, या फिर बहुत सारे फिल्म्स या फिर अलग अलग प्रकार के अचीवमेंट्स, शेयर मार्केट में इतना पैसा हुआ, ये हुआ, इतना मिल गया, या फिर कुछ ज्यादा कुछ प्राप्त कर लिया तो खुश होता है, या फिर बहुत सारे लोग उसकी वाहवाही कर रहे होते तो खुश होता है। पर भक्त कब खुश होता है, जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चल रहा होता है, भक्त कब खुश होता है? जब भगवान की कथा उसको कानों में पड़ती है तब खुश होता है। जब भगवान की भक्ति फॉलो कर रहा हो प्रोग्राम में, वो जब घुसता है मॉर्निंग प्रोग्राम में तब खुश हो जाता है। जब भगवान के भक्तों को देखता है नाचते गाते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, कीर्तन करते हुए, तो वो खुश हो जाता है। तो हमको बार बार पता होना चाहिए हम क्यों खुश हो रहे हैं। और बाहर वाले व्यक्ति भी, जो भगवान ने सबको हंसने का दिया है, हंसने का, खुश होने का, ये सब हमारे अंदर ग्रामर फिट करके दिया है, लेकिन किसके लिए हम खुश हो रहे हैं, किसके लिए हम चिंतित हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए चिंतित हैं, लोग बोलते हैं टेंशन देने का नहीं, टेंशन टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो ये सब बताया जो कि मैंने, कि आजकल जो तथा कथित फिल्म मेकर्स हैं, ये लोग सब हमारे दिमाग में ये सब जो ग्रामर है भर दिए हैं। इन सारे व्याकरणों से हमको बाहर निकल के जो प्रभुपाद जी जो हमें शिक्षा दे रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम जीवन जीते हैं तो हमें पता चलता है कि सच्ची सच्ची सफलता क्या है, सच्चा सुख क्या है, सच्चा हमारे शरीर के अंग जो हमें मिले हैं उसका सच्चा यूज क्या है, हमें किस लिए खुश होना चाहिए, हमें किस लिए चिंतित होना चाहिए, हम किस लिए गुस्सा होना चाहिए। हाँ, भक्त भक्त का अगर कोई द्रोह करता है, विद्रोह उस पर कोई अगर ये करता है तो तब व्यक्ति व्यक्ति जो भक्त है वो क्रोधित होता है। हम देखते हैं कि दास्यम का एक उदाहरण आता है हनुमान जी का। हनुमान जी को भगवान राम जी ने जैसे कहा कि जाओ सीता का पता करके आओ, तो जो दास्य होता है वो केवल अपने, तीन प्रकार के दास बताते हैं जो सेवक होता है, तीन प्रकार के सेवक होते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है कि कुछ स्वामी बोलता है तो भी वो करता नहीं, ठीक है बोला है ना, इतने लोग हैं कर देंगे कोई, ऐसा जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था कि सबको बोलते थे कि जाओ पाश्चात्य जगत और इंग्लिश भाषा में प्रचार प्रसार करो, पर प्रभुपाद जी ही वो थे जिन्होंने उनको सही से उसको लिया और वो आगे बढ़े उसको लेके, और उनके आगे बढ़ उसको उनका एक डिसीजन से हम देखते हैं लाखों लोगों के का जो जीवन है उनके इस डिसीजन से बदला है। तो हनुमान जी जैसे दूसरा जो दास होता है, सेवक होता है, वो क्या होता है कि गुरु ने जो कहा या जो मालिक ने जो बोला है उतना करना, उससे ज्यादा नहीं करना। पर हनुमान जी को पहले दास्यम में पहले नंबर पे माना जाता है, वो मानते हैं उसको, क्यों? क्योंकि भगवान ने जो कहा था उतना ही नहीं किया, केवल उससे ज्यादा भी कुछ किया। ज्यादा क्या किया? भगवान ने कहा कि सीता का पता लगा के आओ, भगवान हनुमान जी गए सीता जी का पता लगाए, इतना ही नहीं, रावण की कितनी शक्ति है वो पता लगाए, वहां कौन कौन है, हमारे हमारे शत्रु कौन है और मित्र क्या है, इसका पता लगाया। हम देखते हैं जब सुग्रीव जब विभीषण शरण लेने आता है रावण राम जी का, तो सुग्रीव बोलता है ये तो रावण का भाई है, ये तो घर का भेदी है,
तो मतलब या फिर घर का भेदी नहीं, मतलब ये उसका साइड से हम लोग को प्रॉब्लम करेगा। पर हनुमान जी बोलते नहीं, जब मैं लंका में था तो मुझे पता चला केवल एक घर से भगवान के आपके नाम की ध्वनि आ रही थी, राम राम, वो विभीषण का ही घर था। तो मित्र कौन है ये पता लगाया। उसके बाद रावण ने जो जो कुकृत्य किया था, सीता का हरण किया था, और चूंकि अगर किसी की माँ को कोई अगर उठा के लेके जाए तो वो व्यक्ति केवल जाके थोड़ी पता करेगा ये मेरी माँ यहाँ पर आके पुलिस को आके केवल आके इतला करेगा, बताएगा, वो उस व्यक्ति का ईंट से ईंट बजा देगा। वही हनुमान जी ने वही किया, उसकी सारी ईंटें सोना की थी, उसको बजा डाली, उसको जला डाली। तो हम यहाँ देखते हैं कि हनुमान जी दास्यम का सटीक उदाहरण है यहाँ पर। आत्मनिवेदनम, तो आत्मनिवेदन में हम देखते हैं बलि महाराज। बलि महाराज जब वामन देव जी त्रिवक्रम रूप अपना धारण करते हैं, उस समय बलि महाराज का जो साम्राज्य था तीनों लोकों में था, तो एक पग से तीनों लोक नाप लिए उनके, दूसरा पैर से पूरा पाताल लोक नाप लिए, तीसरा बोलते हैं कहाँ रखूं, अभी तो सब तुम्हारा खत्म हो गया। तो बलि महाराज उस समय पूर्ण रूप से आत्मनिवेदन करते हैं, मतलब अपने आप को भगवान को सौंप देते हैं, बोलते हैं हमारे सर पर रखिए। उस समय बलि महाराज को आत्मनिवेदन और प्रार्थना करते हुए देखकर उनकी पत्नी विंध्यावली वामन देव जी को बोलती है कि हे भगवान, ये सारा सारा साम्राज्य ये सब आपका है और ये शरीर भी आपका है, आपने ये तीनों लोकों की रचना की और ये बीच में ये बलि आ गया और इसने अपने आप को इन सारे सारे लोकों का आधिपत्य मानकर अभी आपका चीज आपको ही वापस कर रहा है, बाद में लास्ट में बोल रहा है ये शरीर भी आपका है, ये भी तो आपका ही दिया हुआ है। तो हम देखते हैं सही जो आत्मनिवेदन है वो बलि महाराज ने दिखाया, पर उसका जो मूड है क्या होना चाहिए, वो बलि महाराज की पत्नी जो उनसे भी बड़ी भक्त है वो दिखा रही है कि हमारा कुछ नहीं है, सब भगवान का है और हम सब कुछ भगवान को अर्पित करते हैं। तोमेव वस्तु गोविंदम तोमेव समर्पयामि। तो आगे हम देखते हैं कि अर्चनम वंदनम अलग अलग, इसमें नौ नौ जिसमें है उसमें अम्बरीश महाराज का नाम सबसे नाम आता है कि उनके अंदर नौ ये थे, श्रवणम कीर्तनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्मनिवेदनम पाद सेवनम। पाद सेवनम के रूप में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम में आप जो कुछ भी कर रहे हो वो पाद सेवनम में आता है, जैसे भगवान के विग्रह का दर्शन, उनके उनको प्रणाम करना, सेवा करना, तो पाद सेवनम ये है। तो आगे भगवान के स्वरूप का स्पर्श करना, भगवान के रूप में या मंदिर की परिक्रमा करना, भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी जैसे धाम जाना, द्वारका मथुरा जैसे स्थानों का भ्रमण करना, गंगा स्नान यमुना स्नान करना, ये सब पाद सेवनम है। आगे तो अम्बरीश महाराज के जो आत्मनिवेदनम में जो आ रहे हैं कि उन्होंने सवै मना पुंसा कृष्ण पदार विंदेव करके जो श्लोक है, उन्होंने अपनी वाणी को जैसे पिछले श्लोक में जो मैंने कहा वो सब सारे अपने शरीर के अंगों को भगवान की सेवा में लगाए थे। और जब भी जो प्रॉब्लम आता है तो सबसे ज्यादा कोई चीज का स्मरण होता है, उस समय हमें क्या स्मरण करना चाहिए, भक्त को क्या स्मरण करना चाहिए, वो हमें अम्बरीश महाराज से सीखने मिलता है। जब दुर्वासा मुनि जब उनके ऊपर चक्र छोड़ देते हैं या वो कृत्या उत्पन्न करते हैं और वो उसके ऊपर छोड़ते हैं तो वो भागे नहीं अपने जगह से। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज जो कि स्मरणम का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर, अलग अलग प्रकार के कष्टों, उनके पिता के द्वारा कष्ट देने पर भी प्रहलाद महाराज पूर्ण रूप से भगवान का स्मरण करते हैं, अम्बरीश महाराज पूर्ण रूप से भगवान का स्मरण करते हैं। और ये स्मरण तभी संभव है जब हम इसका प्रैक्टिस करें अपने जीवन में, अन्यथा मृत्यु के अंतिम समय में, मृत्यु के समय ये नहीं आने वाला है। हमें इसी जीवन में आज से ही अपने आप को इस चीज के लिए तैयार करना चाहिए किस प्रकार से हमारा स्मरण बढ़ता रहे। स्मरण तभी होगा जब श्रवण होगा, कीर्तन होगा। श्रवण और कीर्तन से ही ये सबसे बड़े लिंब हैं, ये अंग हैं भक्ति के, श्रवण और कीर्तन, जो अगर हम करते हैं तो हम स्मरण कर सकते हैं और बाद में अंतिम में आत्मनिवेदन भी कर सकते हैं। तो तुलसी रामायण में कहते हैं भगवान राम सबरी को कि नवध भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। मतलब ऐसे करके वो नौ भक्ति के बारे में बताते हैं और नौ भक्ति के बारे में बोलते हैं कि राम जी बोलते हैं कि हे सबरी, आपके अंदर ये नौ प्रकार की भक्ति है। क्योंकि उन्होंने सबरी जो थी अपने गुरु महाराज का, उन्होंने संग लिया, भक्तों का संग लिया, इससे वो भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सके। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस भक्ति के नौ अंग में कोई एक का भी अगर पूर्ण रूप से अगर शरण ले लेता है गुरु साधु शास्त्र के संरक्षण में, तो उसका अपने जीवन की सफलता, परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो अगर जीवन की सफलता प्राप्त करना है तो हमें इस प्रहलाद महाराज के श्लोक पर बहुत ज़्यादा ध्यान आकृष्ट करने की ज़रूरत है और हमें अपने व्यवहार में इसको उतारना चाहिए। ये सब मैं अपने लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों को करने से बहुत ज़्यादा अपने आप को समझ रहा हूँ किस प्रकार से ये सब सारे चीज़ हो सके। लेकिन हाँ, प्रभुपाद जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे गुरु साधु संत साधु संघ को बहुत धन्यवाद है कि ये बार बार इस नवधा भक्ति को बार बार हमारे समक्ष अलग अलग माध्यम से प्रकट करते हैं और हमारे अंदर एक इच्छा का निर्माण करते हैं कि हमें भी इस नवधा भक्ति को फॉलो करना जीवन का एक लक्ष्य मानना चाहिए और सफलता हमें इसी को फॉलो करने में प्राप्त हो सकती। हरे कृष्णा। जय श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद जी की। हरे कृष्ण। किसी का अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।